हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय नौ श्लोक संख्या 40, 41, 42, 43, 44, 45 एंड 46। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की आशा करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सत्तुद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवाय नुपलक्षवर्त्मने। नमो नमस्ते स्फुरिषभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठा यमुः कुयोगिना निरस्तसाम्या तिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिन्दपुर्कषा आभीरशुम्भा यवनाकसादया येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्माय शीते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृषीश्च भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं साम्या यन्मुखम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 40।
प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान्यमान भद्रं प्रजानां प्रजानां अन्विच्छन् आतिष्ठत् सर्वार्थकाम्यया। प्रजापतिर्धर्मपते एकदा नियमान्यमान भद्रं प्रजानां अन्विच्छन् आतिष्ठत् सर्वार्थकाम्यया।
प्रजापतिर्धर्मपते, प्रजापति मतलब समस्त जीवात्माओं के पूर्वज और धर्मपति मतलब धर्म के पिता यानी ब्रह्मा जी। एकदा एक बार, नियमान यमान मतलब नियमान मतलब विधि विधानों और यमान मतलब संयम के नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। भद्रम क्यों? भद्रम यानी कल्याण के लिए। किसके कल्याण के लिए? प्रजा नाम जीवों के कल्याण के लिए। अन्विच्छन मतलब अच्छे से। आतिष्ठत स्थित स्वार्थ अपना हित कामया कामना करते हुए, मतलब अनुवाद देखिए, एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए सर्वाधिक पूर्वक यम नियमों का को धारण किया। मतलब यहाँ श्री प्रभुपाद जी अभी हमें बहुत अच्छे से समझाएंगे कि जब तक जीव केवल अपने ही विषय में सोचता है कि मेरा कैसे कल्याण हो, मैं कैसे इंद्र तृप्ति करूं और मैं सुखी हो जाऊं, तब तक तो न उसका कल्याण हो सकता है और न ही उसके द्वारा किसी और का कल्याण हो सकता है। जब एक जीव के मन में ये इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे सबका कल्याण करना है और उसी से मेरा कल्याण होगा और उसके लिए सबसे पहले मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, तभी कोई जीव जो है वो संसार के लिए उपयोगी हो सकता है। वरना तो जैसे जानवर केवल खाने पीने और सोने और बच्चे पैदा करने में जीवन बिता देते हैं, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है। आज हम देखते हैं साधारणतया मनुष्य कब ये सोचता है कि संसार का कल्याण करना है, कब ये सोचता है कि मुझे किस तरह से नियमों का फॉलो करना है। वो तो यही सोचता है कि बस मुझे क्या करना है, मुझे सुखी होना है, मुझे आनंदित होना, इंद्रिय तृप्ति करनी। तो ऐसा जब तक हम सोचते रहेंगे तब तक कभी भी ना हम खुद आनंद से रह सकेंगे और ना ही कभी दूसरों का हित कर सकेंगे। इसीलिए प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान के नियम को, यम और नियमों को फॉलो करना बहुत ही दृढ़ता से उन्होंने सोचा कि मैं ये सब करूं क्यों? भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन, सिर्फ दूसरों का कल्याण करने के लिए। और आतिष्ठत सर्वार्थ कामया, और क्योंकि दूसरों का कल्याण होगा उसी से मेरा भी कल्याण होगा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यम नियमों को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्र तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है और ब्रह्मा जी ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी। मतलब ब्रह्मा जी हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से नहीं बल्कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप आनंदित हो सकते हो। वे भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धर्म धार्मिक जीवन बिताना होता है। अब यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी साफ बता रहे हैं कि आपको यदि कल्याण चाहिए अपने कुल का, अपने पीढ़ियों जो बड़े पूर्वज जो गुजर गए, तो फिर क्या करना होगा? नैतिक जीवन गुजारना होगा, धर्म के अनुसार जीना होगा, उसी से सबका कल्याण होगा। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्ति में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। और सबसे सुंदर कार्य यदि कोई जीवन में कर सकता है, यदि मनुष्य जीवन का कोई लाभ है, तो यही है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। क्योंकि जब वो भक्त बनेगा तो वो सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सबको फॉलो करेगा। कभी कोई अपराध जैसा कार्य एक भक्त, जो वास्तव में भक्त होता है, वो इतना प्योर होता है कि उसके मन में भी कभी अपराध करने की भावना नहीं होती। तो सबसे ज्यादा जिस चीज की कोशिश करनी है ना, हमें क्या करना है, हमें भगवान का शुद्ध भक्त बनने की इच्छा करनी है। बस भक्त बन जाओ। यस्यासि भक्ति भगवत के किंचना सर्वस गुणे तत्र समासते सुरा। फिर तो बस, फिर भक्त बनने के बाद आपको ढूंढना पड़े, ये नहीं ढूंढना पड़ेगा ब्यूटीफुल वर्ड्स, एक्यूरेट बिहेवियर, कि मैं किस तरह से दूसरों के साथ डील करूं, कैसे मैं सही तरह से रहूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो खुद ब खुद अंदर से आ जाता है। जब शुद्ध भक्त बन जाता है सर्वे गुण स्तत्र, उसके अंदर खुद ब खुद सारे गुण आ जाते हैं। और यहाँ तक कह दिया कि हराव भक्ति कुतः महत गुण, के जो भक्ति नहीं करेगा ना उसके अंदर कभी गुण नहीं आएंगे। वो दिखावटी तौर पर, खोखले तौर पर बहुत सोफिस्टिकेटेड लगेगा, वेल ड्रेस्ड पहनकर अच्छा लगने लगेगा, लेकिन अंदर में जाके पता चलेगा भक्ति नहीं है तो कभी कोई प्योर थॉट्स आ ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ साफ बता रहे हैं कि क्योंकि शुद्ध भक्त में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं, इसके विपरीत जो ईश्वर भक्त नहीं है वह सांसारिकता में कितना ही पट्टू क्यों न हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बता रही है कि जब तक आप स्वयं भक्ति नहीं करते हो तब तक आपको अधिकार भी नहीं है कि आप दूसरों को ना इसकी शिक्षा दो। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा ना श्रीला प्रभुपाद जी का आदेश है कि आचरण कैसा होना चाहिए एक भक्त का। यदि वो किसी को बोलता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो उसे सबसे पहले खुद के क्रोध को समाप्त करना। यदि वो किसी को बोलता है कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जीवन बिताना है, तो उसे सबसे पहले अपने जीवन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना चाहिए। क्योंकि यदि आचरण ही नहीं होगा तो उपदेश का कोई लाभ भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था, प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान नियमान, कि उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार समस्त जीव आत्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उन्होंने पहले धारण किया था। ब्रह्मा जी हमारी परंपरा के प्रथम गुरु हैं और उनका जो आचरण होगा उसी को सब फॉलो करेंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने अपने प्रैक्टिकल उदाहरण से ये बताया कि जो बताना है पहले आपको उस पर पूरा उतरना है। आप सबसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा भगवान से कि मैं एक शुद्ध भक्त के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री प्रभुपाद जी के आदेशों को अच्छे से तरीके से फॉलो कर सकूं, ताकि मेरे शब्दों में कुछ तो पावर आए और हम सब का कल्याण होगा इसमें। तो कृपया, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं वो तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अब ये जो सेवा मुझे भगवान ने दी है उस सेवा को मैं अच्छे से कर सकूं, उसके लिए आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम इन सब शब्दों का अच्छे से अच्छे तरीके से अपने जीवन में आचरण कर सके। और ये तो हमारा सबसे परम सौभाग्य है कि इन शब्दों को हम परम वैष्णव श्री प्रभुपाद जी के शब्दों को एज इट इज पढ़ रहे हैं। तो मेरा काम केवल पढ़ के बताना है, बाकी शब्द तो परम पवित्र वैष्णव जो कि आचरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके द्वारा उनके मुखारविंद के शब्द हैं। तो अवश्य हमारे जीवन में कुछ तो नियम और साधना उत्पन्न होगी अवश्य जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण को इन पवित्र महाभागवत के मुख से सुन रहे हैं। आगे
तम नारद प्रियतमो रिक्थादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रशणे प्रशयेण दमेन च तम नारद प्रियतमो रिक्थादानम् अनुव्रतः शुश्रूषमाणशीलेन प्रशयेण दमेन च प्रशयेण दमेन च तम नारद प्रियतमो तम मन उसको नारद मतलब नारद मुनि प्रियतमो अत्यंत प्रिय रिक्थादानम अर्थात उत्तराधिकारी पुत्रों का अनुव्रत अत्यंत आज्ञाकारी और शुश्रूषमाण अतः सदैव सेवा के लिए उद्यत शीलेन सदाचारण प्रश्रयेण अर्थात विनयशीलता से दमेन इंद्रिय संयम से च भी। वैसे तो हम सब ब्रह्मा जी की ही संतान हैं, उनके उत्तराधिकारी पुत्र हैं, एक ही समान हैं, परंतु पिता सदैव उसी पुत्र से प्रेम करता है अत्यधिक, यहाँ पर बता प्रियतमो बहुत ज्यादा प्रेम उसी से करता है जो पिता के उपदेशों का पालन करता है। तो यहाँ बताया गया तम नारद प्रियतमो कि नारद ही सबसे ज्यादा उनको प्रिय है, क्योंकि रिक्थादानम् अनुव्रत कि वो तो बहुत ही अनुव्रत का मतलब अत्यंत आज्ञाकारी है, जैसे ब्रह्मा जी की आज्ञा होती है उसके अनुसार वो कार्य करते हैं और उसके अलावा सदैव शुश्रूषमाणा अर्थात उनकी सेवा करते हैं, शील है ना, सदाचार के साथ, नियमशीलता के साथ, इंद्रिय दमन के साथ। तो इसलिए जो अधिक माता पिता की आज्ञाकारी संतान होती है तो प्रेम भी उन्हीं के साथ ज्यादा होता है, स्नेह भी उन्हीं के साथ ज्यादा होता है और ब्लेसिंग्स भी उन्हीं के लिए निकलती है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है ब्रह्मा जी के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम नियम तथा सौम्यता के साथ पालन करते हैं। और आगे विद्यार्थी जी बता रहे हैं माया विविदिशन विष्णुर मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरन् पर्यतोषयत् मायां विविदिशन् विष्णुर् मायेशस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत् मायां विविदशन विष्णु माया मतलब शक्तियां विविदशन मतलब जानने की इच्छा से विष्णु मतलब भगवान की मायेशस्य महामुनि मायेशस्य मतलब समस्त शक्तियों के स्वामी का महामुनि यानी ऋषि महाभागवतन राजन महाभागवत मतलब भगवान का उत्कृष्ट भक्त राजन हे राजा पितरम यानी अपने पिता को पर्यतोषयत अत्यंत प्रसन्न किया अनुवाद हे राजन नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वपरि था। तो जैसे ब्रह्मा जी की सेवा की, उनके आज्ञा का पालन किया, तो क्या हुआ? तो इससे ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और महाभागवतो राजन पितरम प्रियतोषित, उसको बहुत प्रसन्न करने के बाद उन्होंने पूछा उनसे कि मुझे भगवान विष्णु के विषय में बताइए, उनकी शक्तियों के विषय में बताइए, क्योंकि वो महाभागवत है। और महाभागवत मतलब जो भगवान के उत्कृष्ट भक्त होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को प्रसन्न करते हैं और वैष्णवों को प्रसन्न करके वो कभी ये नहीं बोलते कि मेरी भौतिक इच्छाएं पूरी कैसे होंगी, मुझे ये कैसे प्राप्त होगा, धन कैसे प्राप्त होगा। वो यही जानना चाहते हैं कि मैं भगवान के विषय में जानना चाहता हूँ, इसीलिए वो महावैष्णव की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं, यथा दक्ष, नारद तथा सनक आदि के जनक हैं। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के तीन विभागों यानी कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक सनातन ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया, किंतु इन सब में से नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा सन्नद्धता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। नारद मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ हैं। नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, द्रुह, व्यास से लेकर वन पशुओं के हंता किरात तक के गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य हर एक को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है, इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं। और नारद का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने की इच्छुक रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 10.9 में कहा गया है, मत चित्ता मत गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैसे तो ब्रह्मा जी बहुत सारे योग्य पुत्रों के पिता हैं, जैसे दक्ष, सनक आदि, लेकिन उनमें सबसे प्रिय क्यों है नारद? क्योंकि वो भगवान की उपासना के विषय में बताते हैं। अब जैसे कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये तीन वेदों के द्वारा तीन ज्ञान के विभाग हैं। तो दक्ष ने हमेशा कर्म कांड के विषय में ही प्रश्न किया और सनक आदियों ने जो ज्ञान कांड है उसका ही उत्तराधिकार प्राप्त किया। लेकिन भक्ति जो भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन है, उसके लिए तो केवल नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त ही जिज्ञासा करते हैं। इसलिए नारद मुनि को भगवान का, ब्रह्मा जी का सबसे प्रिय पुत्र कहा गया। और यहाँ पर श्री रूपा जी बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के विषय में ही बात करना पसंद करते हैं। और यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों को किस में आनंद आता है, कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, जब मेरे विषय में बात होती है उसी से उनको आनंद आता है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, परमेश्वर अनंत हैं और उनकी शक्तियां भी असीम हैं, उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त करने के कारण अन्यों की उपेक्षा अधिक जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान से डायरेक्ट से ज्ञान लिया और प्रथम जीव है और भगवान ने उनको अपने विषय में बताया, तो डेफिनेटली दूसरों से तो ज्यादा जानते हैं, लेकिन भगवान असीम है, उनकी शक्तियां परासीम हैं, उनको पूर्णतः कोई नहीं जान सकता है। यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जो नारद से व्यास और व्यास से शुकदेव आदि के आगे चली आ रही है, गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें आदेश दे रहे हैं कि जब भी अपने गुरु से आपको जिज्ञासा करनी हो तो फिजूल के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक भगवान के विषय में ही पूछना चाहिए कि कैसे उस भगवान के प्रति मैं आकर्षित हूँ, ऐसा कुछ बताओ भगवान की शक्तियों के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में, भगवान के कार्यकलापों के विषय में, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते। जैसे जैसे शुद्ध वैष्णवों के द्वारा हम इन सब बातों को भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, वैसे वैसे भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम सोया हुआ है वो जागृत होगा। और यही इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हम भगवान से प्रेम प्राप्त कर सके। आगे वे व्यास जी कहते हैं, तुष्टं निशाम्यं पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छ भवान्यन् मानुपृच्छति। तुष्टं निशाम्य तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपप्रच्छ भवान्यन् मानुपृच्छति। तुष्टं मतलब संतुष्ट हो गए, जब ब्रह्मा जी नारद मुनि की सेवा से बहुत संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। निशाम्य जब नारद मुनि देखा, पितरम यानी मेरे पिताजी ब्रह्मा मेरी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? लोकानाम प्रपितामह, लोकानाम मतलब संपूर्ण ब्रह्मांडों के, प्रपितामह मतलब परदादा है, सबसे प्रथम जीव है। देवर्षि परिपप्रच्छ, देवर्षि नारद मुनि ने मौका देख लिया और परिपप्रच्छ मतलब पूछा, भगवान तुम यत जो माम मुझसे अनुपृच्छति। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वही बातें जो आज आप मुझसे जानना चाहते हो। जब नारद मुनि ने देखा ब्रह्मा जी मुझसे प्रसन्न है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से भी वही बातें पूछी। अनुवाद, जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के परपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में भी पूछा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि, पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के एवज में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, ना ही वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल के जो शिक्षक होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो गुरु को धन देकर खरीद लेते हैं और उनका कोई आदर नहीं करते, उनको प्रसन्न नहीं करने की कोई चेष्टा नहीं करते, बस हैंड रेस करके बोल देते हैं आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब ऐसा लगता है जैसे चैलेंज कर रहे हैं अपने गुरु को। कोई आदर नहीं, कोई भाव नहीं, कोई सेवा। लेकिन गुरु धन के लोभ में किसी को शिक्षा नहीं देता, गुरु वेतन भोगी नहीं होता है, ना ही वो किसी बिना अधिकार के शिष्य को शिक्षा दे सकता है। और भगवत गीता का उदाहरण देते हुए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देशन इस प्रकार बताया गया है 4.34 में, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। बहुत बड़ी बात कर दी भगवान ने यहाँ पर कि आपको जिससे प्रश्न पूछना है, तद विधि प्रणिपाते न, सबसे पहले तो उसकी शरणागति हो जाओ, है ना। हमको ऐसा लगता है जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके ऊपर उपकार करते हैं, लेकिन भगवान ने तो कहा प्रणिपाते न, उसकी शरण में जाओ, उसको नमस्कार करो, उसको दंडवत करो और परिप्रश्न न, जिस तरह से नारद मुनि ने उनकी सेवा की थी ना, गुरु की सेवा करनी होती है और गुरु के आदेशों का पालन करना होता है, गुरु का आदर करना होता है। और जब वो आपके आदर आपके सेवा भाव से प्रसन्न होकर आपसे संतुष्ट हो जाएंगे, फिर बोला, देखो यहाँ पर बताना, तुष्टम निशम या पितरम लोकाना, जब देखा संतुष्ट हो गए हैं, अब मुझ पर कृपा करेंगे, तब वो भगवान के विषय में पूछ रहे हैं। उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, हमारे अंदर ना सेवा भाव है और ना ही उपदेश आदेश का पालन करने की इच्छा है, बस क्वेश्चन करने आते हैं, तो उस तरह से कभी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते, अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना डॉलरों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है, ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल वैयाकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा है, श्वेताश्व उपनिषद 6.23 में बताया गया है, यस्य देवो परा भक्तिर यथा देवो तथा गुरो, तस्य ते कथिता ह्यार्था प्रकाशयन्ते महात्मना। जिसकी अडिग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है, उसके ही लिए दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत है। आज जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा, और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रमाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी ने भगवान से शिष्य रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और उसे अपने प्रिय शिष्य नारद को प्रदान किया। इसी प्रकार नारद ने गुरु के रूप में यह ज्ञान व्यास को हस्तांतरित किया और आगे भी ऐसे ही हुआ। अतः तथाकथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा नारद अथवा नारद तथा व्यास के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा नारद का संबंध एक वास्तविक सत्य था, किंतु ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध तथाकथित औपचारिकता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि नारद न केवल शिष्ट विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरना वे आत्म संयमी भी थे। जो आत्म संयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु बन सकता है। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीभ, मन, उदर तथा कामेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपर्युक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात और बहुत ही मार्मिक बात बता रहे हैं कि जो उपर्युक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना ना तो कोई शिष्य बन सकता है और ना गुरु बन सकता है। मतलब हम शिष्य अगर अपने आप को सही वाला कहते ना कि हम शिष्य बन गए, तो जब तक कि हम अपने क्रोध, अपनी वाणी, अपने मन, अपने उदर, अपनी काम इंद्रियों को पर संयम नहीं रखते ना, अनुशासन नहीं है, तो फिर हम सही शिष्य भी नहीं बन पाए हैं। गुरु तो बहुत दूर की बात है। इंद्रिय संयम के बिना तथाकथित गुरु निश्चय ही वंचक यानी ठग है और उसका शिष्य वंचित है, वो भी ठगा जा रहा। हमें श्लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए, वे सबसे बड़े प्रपितामह हैं और अब भी जीवित हैं। नारद भी जीवित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। ये क्षुद्र पृथ्वी लोक के वासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। सिर्फ गणना, ये रहना नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन है, वो भी कितना है, 4,32,00,00,000 वर्ष जब इस संसार में हो जाते हैं ना, तब उसका एक दिन गुजरता है, वो भी 12 घंटे, और उनकी 24 घंटे के 8,64,00,00,000 वर्ष का उनका एक दिन होता। तो ब्रह्मा जी अब भी हैं, वो मतलब 100 साल तक जीते हैं, और 100 साल के अंदर हर साल में 365 बार तो उनका एक कल्प चेंज होता है ना, एक कल्प में 1,000 बार चतुर्युगी बीतती है। सोच सकते हैं हम कि कितने विशाल ब्रह्मा जी हैं, और वो अभी तक वो जो है वो हमारी गुरु परंपरा के गुरु महाराज हैं, और उनका ही अनुसरण करना है। उन्होंने किस तरह से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके भगवान को प्रसन्न किया था, और जिस तरह से नारद मुनि ने अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करके भगवत ज्ञान प्राप्त किया, तो इसी परंपरा से हमको इसी तरह से शुद्ध और पवित्र ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और जब इस तरह से प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने जिज्ञासा की, उसके बाद वेदव्यासी बता शुकदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज को, तस्मा इदं भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत, तस्मा इदं भागवतम पुराणम दशलक्षणम प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत, तस्मा इदं भागवतम, तस्मा मतलब उसके पश्चात। भागवतम सुनने के लिए कितना तो प्रयास करना पड़ा नारद मुनि को, ब्रह्मा जी की आज्ञाओं का पालन करना पड़ा, ब्रह्मा जी की सेवा करनी पड़ी, उनके आदेशों का उपदेशों का पालन करना पड़ा, उनको संतुष्ट करना पड़ा, तस्मात उसके पश्चात। लेकिन हमारे ऊपर तो कितनी अनुकंपा है, कभी कभी कोई सेवा नहीं की, कभी कोई आदेश का पालन भी नहीं किया, कोई शुद्ध जीवन को गुजारने का प्रयास भी नहीं किया, और श्री प्रभुपाद जी घर बैठे हमको यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण का शिक्षण दे रहे हैं। हमारे ऊपर तो ज्यादा अनुकंपा है ना, तो बता रहे तस्मात इदम भागवतम पुराणम दशलक्षणम, उसके पश्चात इदम यानी ये जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं, इदम मतलब यही भागवतम, भागवत यानी भगवान की महिमा अथवा भगवत ज्ञान, पुराणम दशलक्षणम, पुराणम यानी उपवेद है, दशलक्षणम 10 विशिष्टताएं हैं, प्रोक्तम भगवता प्राह, प्रोक्तम मतलब वर्णित किया, भगवता यानी भगवान द्वारा, प्राह कहा, जो भगवान ने उनको बताया था वही उन्होंने नारद मुनि को बताया, प्रीतः पुत्राय भूतकृत, प्रीतः मतलब संतुष्ट होकर। वास्तव में गुरु जब हमारी सेवा से संतुष्ट होता है ना, तभी वास्तविक ज्ञान उसके मुख से निकलता है। लेकिन ये श्रील प्रभुपाद जी के हमारे ऊपर अनुकंपा है, कभी संतुष्ट भी नहीं किया श्रील प्रभुपाद जी को, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा उंडेल दिया हमारी झोली में, जो कुछ भी रत्न उनके पास था, संतुष्ट होकर पुत्राय यानी पुत्र से भूतकृत यानी ब्रह्मांड के सृष्टा। अनुवाद देखिए, तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। श्रील प्रभुपाद जी कहते, यद्यपि चतुश्लोकी भाग श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। जो 10 लक्षण हैं कि भागवतम में अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उत्य मनवंतरेशानुकथा निरोधा मुक्ति आश्रय, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इनकी व्याख्या हम सही तरह से अगले अध्याय में करेंगे। चार श्लोकों में पहले ही बताया गया कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सूक्ति जन्मादस्य से होता है। यद्यपि जन्मादस्य शुभारंभ है तो भी जिन चार श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल हैं, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या की गई है। यानी कि जैसे वेदों में बताया गया, वेद के अनुसार जैसे वेदांत सूक्ति है ना जन्मादस्य, कि जो कुछ भी है संसार में, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जन्म सेंटर यानी पालन और मृत्यु, जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही होता है, पालित किया जाता है और मृत्यु। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या क्या होता है, उसमें 10 अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो वो क्या होती हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बताया कि तो भी जिन चार श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल हैं, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या की गई। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक ही कहे थे। अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ के हैं। ऐसा श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मत सोचना कि भगवान के मुख से तो 400 श्लोक और वेद व्यास ने 18,000 श्लोक बता दिए, तो बाकी के 17,994 श्लोक तो ऐसे ही होंगे। इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, ना जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को जो 4 श्लोकों में भागवत सुनाई थी ना, वो इतनी गूढ़ थी कि अगर हमारे सामने वो 4 श्लोक आए तो पूरी जीवन माथा पटकते रहे तो एक शब्द भी समझ में नहीं आए। इसलिए उन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या की आवश्यकता थी। और ब्रह्मा ने नारद को यही बताया था कि उन्हें जो उपदेश उन्होंने दिया उसका विस्तार करो, उसको डिटेल से बताओ ताकि समझ में आए हम जैसे बुद्धिहीन व्यक्तियों को। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को संक्षिप्त में इसका उपदेश दिया, किन्तु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार किया। हम इन्हीं अधिकारियों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा किसको दी, श्रील रूप गोस्वामी को दी, और श्रील रूप गोस्वामी ने इसी को बहुत ही विस्तार से बताया। फिर इसी विषय को श्रील रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को संक्षिप्त में बताया, मतलब जितना बताया था जीव गोस्वामी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है वो कितनी डिटेल से है। तो इन्हीं अधिकारियों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवत ना तो कोई साधारण उपन्यास है, यानी कोई स्टोरी नहीं है, इसको कभी कथा समझ कर नहीं। हम क्या सुनते हैं, कथा जैसा सुनते हैं, प्रहलाद की कथा, आज ध्रुव की कथा, ये भीष्म पितामह की, गजेंद्र, कथा समझ कर कभी नहीं सुनना चाहिए इसको। ये जो मैं सुन रहा हूँ वो भगवान की लीला है और इस लीला को श्रवण करने से मेरा कल्याण हो जाए, फिर चाहे करोड़ दफा भी सुनेंगे ना। तो ऐसा बताया जाता है कि जो कथा को श्रवण करके उसके मन में आए ना कि ये वाली कथा मैंने सुन ली है, तो समझो उस कथा का कुछ भी समझ में नहीं आया उसे, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो प्रत्येक क्षण रस देने वाली है, आनंद देने वाली, जितनी बार सुनते ना उतनी बार उसका आनंद दुगुना त्रिगुना होना चाहिए। रामचरित जो सुनत अगाधा, भगवान की लीला को जो सुन के जो अगाध हो जाए, तृप्त हो जाए कि बस ये मुझे पता है, अभी ये नहीं सुनना, तो फिर समझो उसको तो पता ही नहीं है कुछ, कि उसका कथा का क्या आनंद है। तो यहाँ बताया कि साधारण उपन्यास नहीं है, ना ही संसारी साहित्य है, कोई डाइजेस्ट नहीं, इसकी शक्ति अपार है। इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करती है, अतः इसे चाहे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अरब श्लोकों में, या एक जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म है और अनंत आकाश से भी विस्तृत है, श्रीमद् भागवतम की शक्ति ऐसी ही है। प्रभुपाद की जय। तो और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं कि जिस तरह से नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद नारद प्राह मुनयः सरस्वत्यस्तटे नृपः ध्यायते ब्रह्मा परमं व्यासायामित तेजसे नारद प्राह मुनये सरस्वत्यस्तटे नृपः ध्यायते ब्रह्मा परमं व्यासाया मित तेज से नारद प्राह मुनये। फिर नारद ने प्राह मतलब कहा, नारद मुनि ने उपदेश दिया किसको, मुनये मुनि को। कौन से मुनि, कहाँ पर थे, तटे नृप, सरस्वती नदी के तट पर, नृप मतलब हे राजा परीक्षित, ध्यायते ब्रह्मा परमम, वो सरस्वती नदी के तट पर क्या कर रहे थे, ध्यान मग्न बैठे हुए थे, ध्यान लगा रहे थे, किसका, ब्रह्म परम यानी परम सत्य का, परम परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। और उनका नाम क्या था, व्यास यानी श्री वेद व्यास जी। और वो कैसे हैं, व्यासा मित तेज, अमित तेज मतलब उनके पास अपार तेज था, अपार शक्तियां थी, उन्होंने सारे शास्त्रों का सारे शास्त्रों को लिपिबद्ध किया था, सारे शास्त्रों को प्रकट किया था, तो अपार तेज था उनका। तो ऐसे व्यास देव जब समस्त शास्त्रों को, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण 108 उपनिषद को लिखने के बाद जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सरस्वती नदी के किनारे पर परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, ध्यायते ब्रह्म परम, और भगवान के ध्यान करके वो सोच रहे थे कि इतना सारा वैदिक साहित्य लिखने के उपरांत भी मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई तो मैं कैसे संतुष्ट होऊंगा, और जब तक मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ तो भला वो लोग जो इन शास्त्रों को पढ़ेंगे वो कैसे संतुष्ट होंगे। उस समय नारद मुनि ने उनको ये ज्ञान दिया था। अनुवाद देखिए, हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यास देव को दिया जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद ने व्यास देव को निम्नलिखित उपदेश दिया। अथो महाभाग भवान अमोघदेक शुचि शवा सत्यरतो धृतव्रतः उरु क्रमस्य किल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम्। अर्थात हे भाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और अथो महाभाग भगवान अमोघद्रिक, और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। शुचि श्रवा सत्य तनु धृता, और मैं उरुक्रमस्य खिल बंध मुक्तया, मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टता, तुम उसी भगवान का ध्यान करो। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन भक्ति योग होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं करते, वे तो जैसा यहाँ इंगित किया गया है परम ब्रह्म यानी ब्रह्मा परमम का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है। अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। नारद श्री नारद मुनि वेद व्यास के गुरु होने के नाते वेद व्यास जी को की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्रील व्यास देव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित हैं। नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया समाधि नानु स्मरण तद्विचेष्टता कि तुम उसी भगवान के ध्यान भगवान का ध्यान करो, उनकी लीलाओं का ध्यान करो, उनके विषय में सोचो। तो कोई ब्रह्म या ज्योति का ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान किस में करना? भगवान के स्वरूप का ध्यान करने का। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक हैं और ये सारी लीलाएं दिव्य होती हैं और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की सारी लीलाएं जो हैं वो दिव्य हैं, ये भौतिक नहीं है। यदि परब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी वेद व्यास जी को उनका ध्यान करने का उपदेश ना दिया होता। परब्रह्म तो भगवान श्री भगवान है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द उच्चारण किए। श्रीमद् भगवद गीता 10.12 and 13 परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितु देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में के परम ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा, किसी निराकार का ध्यान करने की को नहीं कहा, क्योंकि ये तो पहले से ही साबित हो चुका है कि परम ब्रह्म यदि कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवद गीता के उद्देश्य का सार संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हुए कहा है, प्रभु आप परम ब्रह्म परम नाम पावन परम सत्य और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप चिन्मय आदि देव हैं। नारद आसित देवल व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे इसी की पुष्टि कर रहे हैं। जब व्यास देव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते नारद ने व्यास जी को बोला भगवान का ध्यान करो और भगवान जब उन्होंने ध्यान स्थित किया तो भक्ति योग समाधि में किया, भगवान का ध्यान किया और परम पुरुष की माया सहित साक्षात दर्शन हुआ। भगवान का भी दर्शन हुआ और माया का, जैसा कि पहले कहा जा चुका है भगवान की माया भी एक प्रतिरूप है, क्योंकि माया का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता, बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता, किंतु यह माया भगवान से पार नहीं पा सकती, यह उनसे दूर यानी अपाशयम खड़ी रहती है, भगवान को स्पर्श नहीं करती है। भगवान की शक्ति है लेकिन भगवान से दूर ही रहती है। अतः ध्यान की सिद्धि भगवान की दिव्य लीलाओं समेत भगवान का साक्षात्कार बोध है। भगवान की लीलाएं और भगवान का जो साक्षात्कार है, भगवान का जो साकार स्वरूप है, उसका भी बोध हो तभी वास्तविक ध्यान है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है, क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्ता सत्तचेतसां। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ध्यान तो केवल भगवान के साकार स्वरूप का ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं भी बताया कि अगर निराकार का ध्यान करोगे तो तुम क्योंकि देहधारी हो तो तुम निराकार का ध्यान करने में तुम्हें बहुत कठिनाई होगी। और आगे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि मैंने तुम्हें संक्षिप्त में तो वो चार श्लोक सुना दिए, अब मैं तुम्हें उसको उन्हीं चार श्लोकों की विस्तार करके, उनकी व्याख्या करके तुम्हें ये सारी चीजें डिटेल से समझाऊंगा। वे कहते हैं, तद्दुताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथातिस्तद् उपाख्यास्ते प्रश्ननान् यश्च कृष्णश यदुत्ताहं त्वया पृष्टो वैराजात् पुरुषादिदं यथासीत् तद् उपाख्यास्ते प्रश्नानं यश्च कृष्णश यदुत्ताहं त्वया पृष्टो यत् मन जो उत्मन है अहम यानी मैं त्वया यानी तुम्हारे द्वारा प्रश्न मनी पूछा जाकर तुम्हारे द्वारा जो प्रश्न मुझसे पूछे गए थे यानी तुमने मुझसे जो क्वेश्चंस किए थे वैराजात विराट रूप में पुरुषात भगवान से इदम यह जगत यथा जिस प्रकार आसीत यानी था वह यानी कि आपने मुझसे ये पूछा था ना कि किस प्रकार ये संसार भगवान से प्रकट हुआ है ये ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में किस प्रकार से होता है तो यदासीत तद उपाख्यास्ते वो सारी चीजें तद उपाख्यास्ते मतलब मैं कहूंगा प्रश्न न्याश्च कृष्णश प्रश्न मतलब समस्त प्रश्न अन्यान जो भी तुमने सारे प्रश्न पूछे थे ना वो सारे जब कृष्ण वो सब अभी मैं तुमको डिटेल से कृष्णश मतलब उसको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। हे राजन तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में किस प्रकार प्रकट हुआ और अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त चार श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार से कहूंगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। निगम कल्प तरुण गलितम फलम अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंध जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सब का उत्तर भागवत में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि वेदों का जो सार है ना वो भागवत है और वेद ही समस्त ज्ञान है और ज्ञान का जो निचोड़ है वो भागवत है तो भागवत में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जो भी प्रश्न है जो भी क्वेश्चंस हैं उन सब का उत्तर यहाँ भागवतम में आएगा। ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। अब यहाँ श्री रूपा जी ने पूरी बात बता दी कि अब इसमें सारे उत्तर तो आएंगे लेकिन जो बताने वाला होगा उस बेचारे की जितनी योग्यता होगी उतना ही बता सकेगा। जैसा कि परम वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम के दस विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठाएगा। अभी जो 10 यहाँ पर विषय बताए जाएंगे अत्र सर्ग विसर्ग उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे लेकिन उसके लिए बुद्धिमान पुरुष जो है उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेगा। तो भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम उसी को मैं बुद्धि प्रदान करूंगा। तो हम सब अगर इन सब प्रश्नों के उत्तरों को जानना चाहते हैं तो हम सबको अच्छे से भगवान के नाम का जप करना चाहिए ताकि भगवान हमको बुद्धि प्रदान करें। और श्रील प्रभुपाद जी ने बता दिया बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेगा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय सिकंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक नवे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की शील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की धाई गौर।